Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dharma aur darshan ka itna samanvay hai, ved padh karke bhi vyakti achha bol sakta hai, achha mantron ka vyakhyan kar sakta hai. लेकिन इतने मात्र से वो वैदिक हो गया ये नहीं माना जा सकता. इसमें एक समस्या है. समस्या ये है, कोई व्यक्ति साल भर झूठ बोलता है, हाँ हमेशा झूठ बोलता है, और उसे यदि कहा जाए कि तुम्हें सत्य के ऊपर निबंध लिखना है, हाँ उसे कहा जाए कि सत्य के बारे में तुम्हें कुछ लिखना है, और इतना बढ़िया लिखता है वो कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन स्वयं कभी सत्य बोलता नहीं. और जो बेचारा सत्य बोलता है, सत्य पर रहता है, और उससे कहा जाए तू भी इसके ऊपर निबंध लिख, शायद वह उतना अच्छा नहीं लिख सकता. अब कितना फर्क है दोनों में. एक सत्य बोलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, लेकिन सत्य के बारे में जब उससे लिखने के लिए कहा गया लिख नहीं पा रहा है ठीक से. और एक कभी सत्य बोलता नहीं, हमेशा झूठ बोलता है, और उससे कहा गया तुम लिखो, इतना बढ़िया लिखा कि आप सोच भी नहीं सकते. अभी का वातावरण वही है. अभी का वातावरण कैसा है? बोलते सब क्या है? सत्य बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, खास करके ऐसे लोगों की बात करें. ग्लोबल वार्मिंग की बात चलती है आजकल, लगता है कि उसी को केवल सूर्य के परत में छेद हो गया है. ओजोन परत बोलते ना, उसमें छेद हो गया, उससे सूर्य की किरणें डायरेक्ट आने लगी है, उससे गर्मी बढ़ गई. अब कुछ लोग बोलते गर्मी नहीं बढ़ी, हम लोगों के सहन शक्ति घट गई है. अभी भी सहन करने वाले गर्मी नहीं मानते ज्यादा हो. पुराने लोग बोलते थे जब ज्यादा गर्मी हो मोटे कपड़ों पहनो, मोटे कपड़े पहनने से पसीना आएगा, और वही जब भीगने के बाद ठंडा होगा ना तो शरीर में ठंडक मिलती है. हाँ ऐसा बोलते हैं, यही है ना. और अभी एकदम पारदर्शी कपड़ा पहनते ही गर्मी न लगे. अरे गर्मी को आने के लिए आपने सीधा रास्ता दिया तो गर्मी तो लगेगी ना. मोटे पहनेंगे तो उससे जैसे ठंडी को मोटा कपड़ा रोकता है, ऐसे गर्मी को भी रोकता है. और उससे अंदर से जो पसीना निकला और उसमें जरा से भी हवा लग जाए, इतना ठंडा लगता है कि बस पूछिए मत. आज से प्रयोग करके देखना थोड़ा. अब पसीना आवे तो बदबू आती है, सब नाक में ऊपर से छिड़कते रहते परफ्यूम आदि, अपने आप को छिपा के दबा के रखते हम लोग. विशिष्टानुभूति की बात चल रही है. ये जितने भी संसार का व्यवहार है, तो बातें तो हम करते हैं बढ़िया बढ़िया कि देखो जी ऐसा होना चाहिए, भाषण देते हम गरीबी दूर करके रहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी समस्या आ गई, लेकिन स्वयं एयर कंडीशन वाले हॉल में बैठे बोले पानी की समस्या आ रही. कल परसों दिखाया न्यूज में, एक पेट्रोल पंप में एक पेट्रोल के बॉक्स, एक डीजल का, बगल में पानी का भी लगा दिया. बोले वो दिन दूर नहीं पेट्रोल पंप में जाके लोगों को पानी पीने के लिए जाना पड़ेगा, पेमेंट करो पानी पियो. तो जब हम एक एयर कंडीशन हॉल में बैठ के और बिस्लरी बोतल लेकर के बैठ के जब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो जो असली ग्लोबल वार्मिंग का अनुभव कर रहा है उसमें और हम में कितना अंतर है. कहने का मतलब है वेद के मंत्र को जान लिया, याद कर लिया, लेकिन इतने मात्र से हम वैदिक हो गए, ये मानना अपने आप से बेमानी है. सत्य के ऊपर लिख सकते हो, सत्य के ऊपर बोल सकते हो, लेकिन जब उसको हम अपने जीवन में आचरण का विषय नहीं बनाते तब तक वह विशिष्टानुभूति नहीं हो सकती. बोले ऐसा अनुभव न होने में क्या कारण है? बोले मनुष्य जो है ना सबसे खतरनाक इसलिए होता है आशावादी. आशा एक ऐसी चीज है, हम लोग अभी तक जीवन में जो भी व्यवहार करते आए हैं हर चीज में आशा लेके बैठे. आशा इतनी प्रबल है, जिस चीज से दुख मिला उसी से पुनः हम सुख की कामना करते रहते हैं। कोई भी सबका अनुभव होगा, घर में आप किसी से कटु अनुभव भी करते होंगे, लेकिन उसमें आप आशा क्या करते हो कि आज नहीं तो कल ये सुधर जाएगा। माता पिता को अपने संतान से भय किस लिए है कि यदि अभी इसके साथ कटु व्यवहार करेंगे तो बुढ़ापे में हमारी सेवा नहीं करेगा। दुनिया में सब लोग आशान्वित होकर के रह रहे हैं, जबकि आशा कैसी चीज है। तो कठोपनिषद में जहां आया ना नचिकेता का संवाद, वहां पर दो बातें कही है। जब यमराज की प्रतीक्षा करते हैं नचिकेता यमलोक में जाकर के, तो वहां प्रतीक्षा का मतलब क्या है, तो जहां पर निश्चित हो, निश्चय हो, उसमें प्रतीक्षा की जाती है, और जहां अनिश्चय हो वहां आशा होती है। आशा और प्रतीक्षा में थोड़ा भेद किया, अनिश्चय की स्थिति में आशा और निश्चय की स्थिति में प्रतीक्षा। हम लोगों के लिए निश्चय क्या है और अनिश्चय क्या है? जीवन अनिश्चित है और मृत्यु निश्चित है। स्टेशन गए, अचानक अनाउंसमेंट हो गया गाड़ी आने वाली लेट है। अब इतने देर में लौट के घर जाते, आने जाने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी है तो आज आके चली भी जाएगी। गाड़ी आना पक्का है, इसलिए क्या करेंगे, वेटिंग रूम में बैठो। वहां ये नहीं कि गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, कल आएगी कि परसों आएगी। अनिश्चय हो तो आशा करें कि आएगी कि नहीं आएगी। पक्का है आएगी, बस थोड़ी सी लेट हुई है। तो ऐसे निश्चय की स्थिति में हम वेटिंग रूम में बैठते हैं। यहां पर भी हम लोग किसमें बैठे हैं? बैठना चाहिए, सत्संगी है तो सबको इस बात का पता है कि और चीज का हम आशा करें न करें, एक चीज की प्रतीक्षा तो कर सकते हैं और वह है मृत्यु। सबकी मृत्यु निश्चित है अवश्य। क्या बोलते हैं ना, वो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना ध्रुव है, निश्चित है। फिर भी ये आशा के द्वारा व्यक्ति इतना आकर्षित है। महाभारत में एक जगह ऐसा प्रसंग आया जहां पर 10 दिनों तक युद्ध करने के बाद भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे, अर्थात उनका शरीर गिर चुका है। अब ये नहीं कि दोबारा सरसैया से उठेंगे फिर लड़ेंगे। जैसे एक बार व्यक्ति गिर जाता है ना तो बोलते हैं धराशायी हो गए, धड़ गिर गया, बिस्तरा पकड़ लिया, अब तो बस उनका खेल खत्म ही होने वाला समझो, ये बात हो जाती है। 5 दिनों के बाद द्रोणाचार्य जी मारे गए, 2 दिन के बाद कर्णे च निधनम गते ऐसा आया है, हते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च निधनम गते आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। इतने बड़े बड़े धनुर्धारी धुरंधर गिर गए, मर गए, अभी भी अब जब शल्य को सेनापति बना दिया तो अभी भी क्या है कि शायद जीत जाएंगे। यही हम लोगों की भी आशा है। पता है कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी क्या चाहते हैं, कुछ न कुछ हो जाएगा। ये तो उसी प्रकार से है जैसे बालू से तेल पाने की इच्छा। तेल वहां है ही नहीं, तिलेषु तैलम यथा, तो ठीक है तिल में तेल है इसलिए वहां तो मिल जाएगा, लेकिन सिक्तायाम तैलम कहेंगे या सिक्तासु तैलम बालू में तेल, ये वैसा ही असंभव है। ठीक इसी प्रकार से आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। आशावान व्यक्ति का जीवन कैसा होता है तो सबका यहां का बलम तेजो यशश्चैव विद्याम मानम च वृद्धताम तथैव सत्कुले जन्म आशाहन त्यति वेगतः। आशा का जो वेग है इससे इन सभी चीजों का हनन होता है, नुकसान होता है। सबसे बड़ा कितना भी व्यक्ति तगड़ा हो, बलवान हो, यदि आपके मन में उसके प्रति आशा हो ना कि इससे कभी कुछ मिलेगा, वहां पर व्यक्ति बलवान होते हुए भी निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अपने पिताजी का कोई व्यक्ति अपमान कर रहा है खुलेआम, अपने को गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति थोड़ी देर के बाद बोलता है कि भले तुम्हारे पिताजी नालायक है तो कोई बात, तुम बहुत अच्छे हो, हम तुमको नौकरी देंगे। उससे जो नौकरी मिलने की आशा है ना, संभावना है, अपने शरीर में सामर्थ्य होने पर भी पिता का अपमान हम सहन कर लेते हैं, बल होते हुए भी निर्बल हो गए। क्यों? आशा है कि इससे हमें नौकरी मिलेगी, हमारे लिए कुछ करेगा। ये दुनिया में हम जितने भी बैठे हैं ना, सब सबका यही हिसाब किताब है। इच्छा नहीं है बोलने की, फिर भी बोल रहे, इच्छा नहीं है हंसने की, फिर भी हंस रहे। इसलिए जो फक्कड़ वाली बात आती ना, फक्कड़ वाले की बात, किसका नाम है फक्कड़? फक्कड़ उसी को बोलते हैं जो न कोई मुहूर्त तो देखे, न कोई काल देखे। दुनिया में जितने भी लोग आते हैं ना, दुनिया का जितने भी काम होता है, सब में मुहूर्त तो देखा जाता है, दो जगह को छोड़ करके। जन्म और मृत्यु में कोई मुहूर्त नहीं होता, वो तो मरने के बाद मुहूर्त देखा जाता है कि किस में गया है। और वो भी इसलिए देखते हैं, कहा तो ये जाता है कि रास्ता रोका जाता है जीवित आदमी के लिए, मुर्दे के लिए तो हर आदमी रास्ता छोड़ देते हैं। जब मुर्दा आता है ना तो कोई नहीं बोलते इसको मत जाने दो, सब साइड हो जाते हैं अपने आप। लेकिन रुकावट किसके लिए डाली जाती है? जिंदा आदमी के लिए। जाने वाला तो गया, अब कौन से मुहूर्त में गया? कहीं पंचक में तो नहीं गया? पंचक में यदि कोई जाता है तो बोले उसके बाद पांच आदमी के जाने की संभावना रहती है। अब आदमी डर जाता है कहीं ये आपत्ति अपने ऊपर ना आ जाए। पंडित जी उपाय बताओ क्या होगा, क्या बोलते हो? पांच क्या बनाते हैं, किस चीज का? पिंड बना देते हैं। अच्छा, वो कर दिया, उसके बाद भी यदि कोई चला जाए तो क्या करेंगे? बोले हमने पांच पिंड बना दिया, उसके बाद भी रुका नहीं कोई, जिसको जाना था वो तो गया। फिर इस विधि करने का मतलब क्या हुआ? तो जाना और आना दोनों में मुहूर्त की अपेक्षा नहीं है। और पूरे जीवन में कोई भी काम करते हैं, कब हमने शुरू किया, कई बार घटना जब घटती तभी याद करते हैं। पहले तो बोलते हम ये ज्योतिष आदि नहीं मानते, और हमारे यहां वेद का अंग माना गया ज्योतिष को, ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, ऐसा कहा है। ज्योतिष जो है ना एक नेत्र है, जैसे आंखों से हम देख देख करके चलते हैं, ऐसे ज्योतिष के द्वारा हर काल का निर्णय होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं इस दुनिया में आया जो किसी ग्रह नक्षत्र में पैदा न हुआ हो, और इसलिए हर व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव चलता है। तभी तो हम लोगों की बुद्धि दिन रात में कितने बदलते रहते, देखते नहीं है? ये ग्रहों का भी प्रभाव होता है, स्थान का भी प्रभाव होता है। ये कोई कहे कि जहां रहे वही ठीक है, ऐसा नहीं। हाँ, एकदम ब्राह्मी स्थिति आ जाए, इतने दृढ़ हो जाए पक्का, वो तो तब होगा जब ईश्वर के साथ घर्षण करते करते ऐश्वर्य का भाव आ जाए। तो अनेक शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथाक्षीर मिवाम्बु मध्यात। अब जीवन में जो सार की बात है, चलो ठीक है, 20 दिन तो आप लोग सुनी लिए बहुत कुछ, अब इस सार को जो उतारने की बात आती है, हम क्यों नहीं उतार पाते? कुछ अपने अंदर कमी तो है, उसमें यदि सुधार लाएंगे तो जरूर भगवत कृपा होगी। भगवान की कृपा चाहिए ना, अनुकंपा। कैसे प्राप्त हो तो थोड़ा अपने अंदर उस लक्षण को लाने की कोशिश करें। एक बार क्या हुआ, कहीं सत्संग चलता था प्रतिदिन, तो रानी भी जाती थी उस कथा में। चातुर्मास रहा होगा शायद, 2 महीने का या 4 महीने का। राजा नहीं जाता था कभी कथा सुनने। रानी ने कहा कि ये कल जो है कथा की पूर्णा होती है, और जाते जाते लगता है कुछ सार की बात बता के जाने वाले हैं, तो चलो हमने तो सुन लिया जो सुनना था 4 महीने तक, आप कम से कम एक दिन तो चलो सार की बात सुन लो, सार का ही महत्व होता है। कहा ठीक है, उसके भी मन में आ गई भाव, गया रानी के साथ सत्संग में बैठा, और उस दिन सार की बात में उसने सुना। भले जीवन में व्यक्ति को प्रातःकाल उठना चाहिए, प्रातःकाल उठ करके सैर करना चाहिए, घूमना चाहिए। पहला सार बता दिया, प्रातः काले भ्रमणम सारम, ये पहला सार है क्या? प्रातः काले भ्रमणम सारम, प्रातः काल भ्रमण करना सार है जीवन का। दूसरा सार ये है कि अतिथि सत्कारम सारम, जो भी अतिथि आए उनका जरूर सत्कार करो। तीसरा बोल दिया स्निग्ध भोजनम सारम, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। भगवान ने गीता 17वें अध्याय में कहा है स्निग्ध भोजन। स्निग्ध भोजन का मतलब ये मत समझिए कि जिसमें घी तेल ज्यादा हो उसको स्निग्ध बोलते हैं, बल्कि जिस भोजन को देख करके हृदय में स्नेह उत्पन्न हो, और वह स्नेह कैसा कि जो परमात्मा से स्नेह करा दे। हो सकता है किसी को ऐसा अभक्ष्य भक्षण में भी स्नेह हो सकता है, तो उसको भी स्निग्ध नहीं कहा जाएगा। जो परमात्मा के प्रति स्नेह उत्पन्न कर दे ऐसा स्निग्ध भोजनम सारम। चौथा बता दिया, शायद आप लोग नाराज हो जाओगे लेकिन कोई बात नहीं, बाद में आप समझेंगे। कह दिया स्त्री तारणम सारम, राजा ने तो उसके तुम गांठ बांध लिया। ये चार प्रकार की जो सार की बात है तो कभी भूलूंगा नहीं। कथा में तो कब कौन सी बात दिमाग में बैठ जाए पता नहीं चलता ना। अब वहां से आया, अभी तक तो सामान्य जीवन जी रहा था, अब सत्संग के प्रभाव से अपने जीवन में प्रैक्टिकल इसको कैसे करना, घर्षण की बात आ गई, अब तो ईश्वर के तरफ बढ़ना है, जीव भाव से उठकर परमात्म भाव में पहुंचना है, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। प्रातःकाल घूमने निकला, प्रातःकाले भ्रमणम सारम, पहला सार देखते क्या होता है, अभी तक कभी घूमने नहीं जाता था। घूमने निकला तो उस नगर में कोई बुजुर्ग माता वृद्धा थी, चरखा कात रही थी, धागा निकाल रही थी, और बड़े रोए भी जाए दुखी होकर कि बड़े दुख की बात है, हमारे नगर के राजा अल्पायु होने जा रहा है, थोड़े दिनों में सांप आएगा उसको काट लेगा, मर जाएगा, अब इस नगर का क्या होगा, हम सब लोग जो है अनाथ हो जाएंगे, राजा के बिना अराजकता आ जाएगी। राजा ने बड़ा ध्यान से सुना तो देखा ये विपत्ति तो अपने ऊपर ही आने वाली है। सोचा देखो प्रातःकाल घूमने निकले तो अभी तो सुनने को मिला, नहीं तो पता ही नहीं चलता और मैं कब के मर जाता। प्रातःकाले भ्रमणम सारम, जब लौट के आया तो मंत्रियों से मंत्रणा की कि अमुक जगह ऐसा सुना है कोई बुजुर्ग माता बोल रही थी सांप आएगा मुझे काट लेगा मैं मर जाऊंगा क्या किया जाए। मंत्री लोग अपने अपने बुद्धि के अनुसार परामर्श देने लगे, सलाह आएगा तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे बोलते हैं। मंत्री से सलाह तो लेना ही चाहिए लेकिन अच्छे मंत्री हो तो तब ठीक रहता है। तो राजा को इतने में याद आ गया अतिथि सत्कारम सारम, कोई बात नहीं, सांप आ रहा अतिथि बनके आएगा उसका हम जरूर सत्कार करेंगे, मारेंगे नहीं। सांप के लिए सबसे अच्छा बोलते ना, सांप को दूध पिलाओ तब भी वो जहरी देता है काटता है, लेकिन ऐसा नहीं, वो सांप भी विशेष सांप था जो आने वाला था काटने के लिए। काट जहां से भी आए चौराहे के ऊपर बढ़िया कटोरे में जो है ना दूध तैयार करके केसर सब मिला के रखो, सांप को पिलाएंगे सत्कार करेंगे। अतिथि सत्कारम सारम, जीवन का जो सार है देखते प्रयोग करके क्या होता है। सांप जब आया चौराहे पे पहुंचा, कटोरे में जो दूध रखा था पिया, बड़ा प्रसन्न हो गया। सांप ने कहा कि मैं तो तुमको काटने के लिए आया था, काटूंगा, लेकिन दूध पिला करके तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है, इसलिए मैं पहले एक बार काटूंगा और अपनी आयु मैं तुम्हें दे करके जाऊंगा। अतिथि सत्कार का इतना बड़ा फायदा हुआ। हम लोग हर बात में क्या देखते हैं ना, फायदा, क्या फायदा होगा, प्रेमपुरी में जाके क्या फायदा होगा। आत्मलाभा न परम विद्यते, सबसे बड़ा लाभ है आत्मलाभ। दुनिया के लाभ तो दुनिया के लिए ही है, लेकिन यहां से सबको जाना है तो जो अपने साथ जाए वही सबसे बड़ा लाभ हुआ, और उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बार बार यही बात बोलते हैं। आप लोगों को अब कभी मृत्यु की बात हो तो कोई घबराहट होती है क्या, कोई डर तो नहीं लगता ना, यहां तो कम से कम बोलो ना नहीं लगता है, बाहर जाके देखी जाएगी जो होगा। वो एक देखो मृत्यु अभी हमने देखी नहीं है, नाम से डरते हैं, इसका मतलब है संस्कार है। संस्कार किसका है? मृत्यु का। इससे पहले कई बार हमारी मौतें हो चुकी है, उसी संस्कार से भी हम डरते हैं, क्योंकि अभी तो मौत होने वाली है तो अभी डरने की जरूरत क्या है। जो चीज होने वाली हो, भोजन जब बनेगा तब खाएंगे तब भूख मिटेगी, अभी से कैसे बोल रहे हो कि तो ऐसे ही मौत जब आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन जैसे हम नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं, इसका मतलब इससे पिछले जन्मों में कई बार इसका अनुभव हो चुका है, वही संस्कार पुनः स्मृति में आ जाता है, इसलिए शरीर के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। अतिथि सत्कार के बाद सांप से आयु मिल गई, राजा को लगा दूसरा सार भी बड़े काम का निकला। अब राजा ने जो भोजन में उठपटांग खाता था, अभक्ष भक्षण, नॉनवेज आदि खाना छोड़ दिया, सात्विक भोजन। भोजन करते समय चीटा और चीटी की जोड़ी वहां आते थे हमेशा, राजा जो नैवेद्य में डालता होगा उसको खाने के लिए, तो जो अच्छी चीज हो खा के चले जाए, नॉनवेज आदि सूंघे भी नहीं हो। वो दिन पूरा सात्विक भोजन था, तो चीटा ने चीटी से कहा कि राजा एक दिन सत्संग में गया तो देखो सुधर गया, इसका जीवन ही बन गया, अब तो पूरा सात्विक भोजन करने लगा। राजा छोटे छोटे जीव जंतुओं की भी भाषा जानता था, जब चीटा को चीटी से ऐसा कहते हुए सुना तो राजा को हंसी आ गई। रानी वही पंखा झेल रही थी, पूछा क्यों हंसे? बोले बस ऐसे हंसी आ गई, क्योंकि जिन्होंने ये विद्या दी थी राजा को कि सभी जीव जंतुओं की भाषा तुम जानोगे लेकिन किसी से बताओगे नहीं, यदि बताओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। रानी ने कहा क्यों हंसे? राजा ने कहा बस ऐसे हंसी आ गई, नहीं ऐसा तो मैं ही हूं, यहां और तो कोई है नहीं, बताना पड़ेगा। राजा ने कहा बता तो दूंगा लेकिन बताने पर मैं मर जाऊंगा। रानी बोले तो नहीं बताने का बहाना है, क्यों मरेंगे आप बताइए। राजा ने सोचा देखो मेरे मरने पर भी इसको कोई गम नहीं है, तो जब बता के मरना ही है तो यहां क्यों मरे, कहीं अच्छी जगह में बताएं ताकि मरूंगा भी तो सदगति हो जाएगी। मंत्री को बुलाया, बोले रानी को कोई विशेष बात बतानी है, उसके लिए सब तैयारी की जाए, गाजे बाजे के साथ और भी सेना लोग साथ में चले, और एक नदी के किनारे गंगा जी के किनारे बैठकर रानी को मैं अपने मन की बात बताऊंगा और उसके बाद मैं मर जाऊंगा, मेरी सदगति हो जाएगी। जब चलते हैं रास्ते में तो एक जगह विश्राम करने के लिए रुके और वहां देखा इतने में कोई गडेरिया भेड़ बकरी चराने वाला आया, बहुत सारे भेड़ बकरी का झुंड, उसमें एक ऐसा बकरा और बकरी की जो जुड़ी थी ना, वो बकरा बकरी से बहुत प्रेम करता था। तो बकरी ने कहा बकरा से तुम मुझसे प्रेम करता है? बोले हाँ, उसमें भी कोई संदेह है क्या? बोले मैं तो तब मानूंगी, वो जो कुआं है ना, कुएं के ऊपर वो लंबी लंबी जो घास लटक रही है वो तुम मुझे ला के दोगे तब मैं मानूंगी कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। बकरा ने कहा अच्छा ठीक है, गया मुंह से लेने की कोशिश की, ज्यादा आगे बढ़ेगा तो कुआं में गिरेगा, नहीं तोड़ पाया। बकरा ने सोचा ऐसा प्रेम भी क्या अपने जान को जोखिम में डाल करके करना, अभी इसको बताता हूं। बकरी को कहा घास तो नहीं दूंगा, तुम्हें बताता हूं। मारना शुरू किया, बकरी बोलती नहीं नहीं हमें कोई घास नहीं चाहिए, रहने दो। राजा ने सोचा एक बकरा बकरी को कंट्रोल कर सकता है तो मैं रानी को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको चौथे सार की बात याद आ गई, स्त्री ताड़नम सारम। तलवार निकाली म्यान से, रानी को कहा आओ। रानी बोली क्या हुआ? बोले जब तुम्हें मेरे मरने पर कोई गम नहीं तो तुम्हारे जिंदा रहने पर हमें क्यों गम, हम तुम्हें ही मार देते। रानी बोली कौन बोलता है बात बताने के लिए, चलो वापिस यहीं से। समझ में आ गया? हमारे वेदांत शास्त्र में बोलते हैं विवेक करना आ गया तो आप पुरुष बन गए, जब तक विवेक नहीं है तब तक सब के सब स्त्री ही हैं। और विवेक करना तब होगा जब ये सार की बातें जीवन में उतरे। वो बकरा बकरी क्या है? बोले ये इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये ले लूं ये खा लूं फिर भी मन भरता नहीं है। फिर वो बकरी बोलती है बकरा से वो घास दे दो, उधर से ला के दे दो, चरती रहती है लेंडी करती रहती है, पेट कभी भरता नहीं। देखो बकरी का चरती रहेगी, बस उसको मिलना चाहिए, मुंह चलता रहेगा। इसीलिए ऐसे हम लोगों की इंद्रियां बकरी की तरह है, लेकिन जब इसमें विवेक जागरूक होता है तब जाकर के हम पुरुषार्थ की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे वहां राजा ने सार की बात अपने जीवन में उतारा, ऐसे हम लोग भी अब क्या करें भाई। आप लोग 12 महीना सत्संग करते हैं, इतना बड़ा प्रेमपुरी सत्संग भवन बंबई जैसे नगरी में अत्यंत प्रसिद्ध जगह है, और आप सब बहुत पुराने श्रोता हैं मातृशक्ति, और इधर भी आप जो हैं श्रोतागण प्रेमपुरी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित 12 महीना बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों के द्वारा शास्त्र के माध्यम से अपने स्वरूप का जो ये चिंतन चलता है, इसके लिए हम बाबुलनाथ भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। आप सभी श्रोतागण, यहां भी जितने ट्रस्टीगण हैं, और खास करके हमारे गिरीश भाई जी जो प्रातःकाल आते हैं, इनका भी बड़ा योगदान है, और इधर ये माइक में जो भी हम लोग बोलते हैं आप लोग हंसते हैं, शायद ये पूरी आवाज दुनिया में जा रही है। यहां बैठे ना दिनकर ये सब लगे हैं, वेबसाइट में डाल देते हैं हर रोज, अमेरिका आदि में लोग बैठ के सुन रहे हैं। जिनको जहां जिज्ञासा अपने आत्मकल्याण के लिए वहीं पर तत्पर है, तो जो भी देश विदेशों में रह करके इस दैनिक सत्संग का लाभ लेते हैं, उन सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी शुभकामना के साथ, मंगल कामना के साथ, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए यही कहते कि हे प्रभु, जो ये मनुष्य जीवन मिला यह सार्थक हो, आप अपने चरणों में स्थान दें, जीव भाव से उठकर परमात्म भाव को प्राप्त करें। इन्हीं बाक पुष्पांजलि को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए वाणी को यहां पर देते हैं विश्राम। आगे का जो भी कार्यक्रम होगा आपको गिरीश भाई जी सूचना देंगे। हरिओम।
हरिओम। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन। महाराज जी ने हरियाणा एक्सप्रेस से शुरू किया था, जिसको याद हो, और तलवार पर जाके पूरा हुआ। बड़ी अच्छी सफर रही, क्योंकि वो जो घाट का जो एरिया रहता है हरियाणा के एक्सप्रेस का, जो पूरे ड्राइवर की उन्होंने वो बातें भी बताई थी, जो भी यहां उपस्थित ना हो उनके लिए, कि जो हरियाणा एक्सप्रेस और जो पंडित थे प्रवचन करने वाले, दो का उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण से ये शुरुआत की थी। कैसेट ले ले, क्योंकि मैं पुनरावर्तन करूं उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि महाराज जी जो उनके वाणी है उसमें ही हम सुने तो आनंद आता है। वेबसाइट हो तो पहली तारीख जो महाराज जी ने शुरू किया, तो हरियाणा एक्सप्रेस की बात जरूर से सुने। जीवन में ऐसी चुटकुलियां थोड़ी होती है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा रिलैक्स मिलता है, थोड़ा सुनने में आनंद आता है, मगर उसका अगर रहस्य सुनते जाए तो हर चुटकुले के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य महाराज जी द्वारा होता है। और ऐसी पवित्र वाणी और महाराज जी को देखते हैं तो बड़ी शांत मुद्रा में रहते हैं। महाराज जी को प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी पूछा था, फिर माइक पे महाराज जी ने बात की भी थी, मेरा नाम नहीं दिया था, उनका बड़प्पन है, मैं माफी मांग लूं। महाराज जी हरिद्वार से, जो मां आनंदमयी मां का आश्रम है, उनके सामने ही छोटा आश्रम है, बहुत ही सुंदर पवित्र वातावरण में महाराज जी रहते हैं, तो उनकी ही जो वातावरण की जो हमें जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से कुछ महाराज जी की सुंदर वाणी हमें प्राप्त होती है, और बड़े शांत चित्त से। कोई ऐसी बात नहीं होती है कि मुझे भागना है, एक अध्याय पूरा करना है या पूरा करना है, जो कहना है सरल रीत से उसको आपको सरल शांति से समझ में आए, इस तरह से पूज्य महाराज जी की ये पुनीत वाणी रहती है। ऐसे विद्वान संत हमारे बीच में प्रतिवर्ष आ रहे हैं। हम जानते हैं कि 2017 की शुरुआत में हमने नक्की किया कि हो सके अच्छे अच्छे कोई महात्मा आए, उसको एक एक महीने तक हम लें। उसके हिसाब से 2017 की शुरुआत, जिसे हम जानते हैं साधना सदन के विश्वात्मानंद जी महाराज, फरवरी में मोहनानंद जी महाराज को पूरा महीना दिया गया है, और खुशी होती है कि हम सबने मिलकर यह भी निश्चय किया है कि विष्णु वल्लभानंद जी महाराज को पूरा अगस्त महीना सुनेंगे और भी उनसे कई चर्चाएं हुई है कि और भी प्रवचन की श्रृंखला उनकी रखी जाएगी क्योंकि अनायास सायं भी समय नरेश वेद जो कुछ समय के लिए एक दिन के लिए रहे शाम का प्रवचन भी बहुत ही अद्भुत रहा और प्रेरणादायी रहा तो महाराज जी के साथ अगले साल 2017 में बराबर चलेंगे। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।